آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں۔
ایس بی ایس اردو کے لیے میں ہوں کوکب جہاں، اور ستاروں کی دنیا میں آج ہمارے مہمان ہیں جنید خان۔ شکریہ جنید خان، ایس بی ایس کے لیے آپ نے وقت نکالا، اور کافی دنوں سے ہم یہ انٹرویو کرنا چاہ رہے تھے، پہلے والے ڈرامے کے سیٹ پہ بھی آئے، لیکن ہم وہ بات بن نہیں سکی۔ چلیے فائنلی وی آر ڈوئنگ اٹ۔ کیسے ہیں آپ؟
بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟
میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ابھی آپ کس ڈرامے کے سیٹ پہ؟
اس وقت میں ہوں محافظ کے سیٹ پہ۔ یہ ایک پروجیکٹ ہے جو کہ شوٹ ہو رہا ہے فار جیو نیٹورک، اور پروڈکشن ہاؤس ہے سیون اسکائی پروڈکشنز، اور ڈائریکٹر ہیں رام رشوی۔ کاسٹ میں میں ہوں، مومنہ اقبال ہیں، سہیل سمیر ہیں، شامل خان ہیں، بہت بڑی کاسٹ ہے، کافی کاسٹ ہے اس میں۔
تو آپ کا کریکٹر اس میں کیا کر رہا ہے؟
میرا کریکٹر اس میں محافظ کا ہی ہے۔ ایک کریکٹر ہے جو کہ پولیس سے اس کا تعلق ہے، لیکن پھر وہ پولیس کی جرنی اس کی ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ ایک پرسنل باڈی گارڈ کے رول میں آتا ہے۔ باقی جو ہے وہ کہانی آپ ٹریلر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔
اچھا جنید، اب ہم وہ تو سارے ہم دیکھیں گے، اور سننے میں بھی لگ رہا ہے کہ ایک ڈفرینٹ کہانی ہے، لیکن ہم نے اس میں جب یہ ہم جو چیزیں ایسے محافظ ہے یا اس طرح کے جو پولیس کے اوپر ڈرامے بنتے ہیں، یہ تو اس میں ہم کیا اکثر ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوئی ایک سیکشن کو ہی اس کو ایول اور بیٹھ کے اس میں لے آتے ہیں، تو ایسا ہی کچھ ہے اس میں بھی؟
نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی آرگنائزیشن کو ہم ایول دکھا رہے ہیں۔ ویسے بھی گڈ اور ایول تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن یہ کیریکٹر ایول نہیں ہے، یہ کیریکٹر بہت ہی پازیٹیو کیریکٹر ہے، اور اصول پسند ہے، اور بالکل بائی دا بک ہے، اپنی ڈیوٹی کرتا ہے تو بائی دا بک کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کی لمیٹیشنس کیا ہیں، اور ایک ٹرو محافظ کی طرح یہ پہلے اپنی ڈیوٹی نبھاتا ہے، اور پھر جن کا باڈی گارڈ لگتا ہے، وہ ابھی آف ہوئی
تو ہے، آف ہو گئی ہے، ہاں
وہی میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی۔
ہاں جنید، سوال ہمارا یہ تھا کہ ہم جب اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں، آپ نے کہا محافظ ہے، اس کے اندر ایک پولیس اور پھر ظاہر ہے وہ کسی سے جنگ لڑ رہا ہوگا، تو اس میں یہ کہ ہم یا تو کسی کو بہت ایول دکھا دیتے ہیں اور کوئی بہت گڈ ہوتا ہے، بیلنس ہمارے یہاں ڈراموں کے اندر کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے نہیں دکھایا جاتا چیزیں۔
نہیں، اس کہانی میں کسی آرگنائزیشن کو ڈیمین نہیں کیا جا رہا۔ میرا کیریکٹر اسپیسیفکلی وہ تو بالکل بھی نگیٹو نہیں ہے، بہت پازیٹیو ہے، اور وہ یہ دکھایا بھی گیا کہ بہت اصول پسند ہے، اور ڈیوٹی اس کا پیشن ہے، یعنی پولیس کی جاب اس کا بہت ہی پرانا پیشن تھا، جس کی خاطر اس نے بہت سے لائٹ پھر گئی۔
پھر چھوٹی
بیٹری کا مسئلہ ہے، کس کا مسئلہ ہے؟
اب یہی رہ گئی ہے، بس اسی کو ٹرائی کرو،
ہولڈ کرو، روکو، چلیے۔
اچھا جنید، ہماری اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح کے ڈرامے بناتے ہیں پولیس کے اوپر یا فورسز کے اوپر، اور پھر ظاہر ہے ان کا مد مقابل بھی کوئی ہوتا ہے، تو اس کے اندر ہم کسی کو بہت زیادہ ایول دکھا دیتے ہیں، کوئی بہت گڈ ہوتا ہے، بیلنس ہمیں کہیں کہیں کم نظر آتا ہے ڈراموں میں یا فلموں میں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟
آئی تھنک ویسے گڈ اور ایول تو ایگزسٹ کرتا ہی ہے، تو اس کو دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ میرے کریکٹر کی بات کرتی ہیں تو یہ بالکل بھی ایول نہیں ہے، یہ بہت ہی پیشنیٹ ہے اباؤٹ دس آرگنائزیشن، اور اسپیشلی پولیس اس کا پیشن ہے، اور بچپن سے جوانی سے اس کا پیشن تھا کہ پولیس میں جاب کرے گا، جس کی خاطر اس نے اور اس کی فیملی نے بہت سیکریفائسز کیے، تو یہ چیز اسٹیبلش کی گئی ہے اس پلے میں، اور کچھ سرکمسٹانسز ایسے آتے ہیں جس کی وجہ سے پھر اس کو آرگنائزیشن سے پارٹ دور ہونا پڑتا ہے، اور پھر آگے ایک اور رسپانسبلٹی لیتا ہے، تو آئی وڈ سے کہ گڈ اور بیڈ ایگزسٹ کرتا ہے، اور ڈراماز میں تھوڑی سی فینٹیسی بھی دکھائی جاتی ہے، بٹ اس آرگنائزیشن کو لے کے ہم نے ایسی کوئی آؤٹ آف دا وے کوئی نگیٹو لائٹ میں اس کو آرگنائزیشن کو ہم نے شو نہیں کیا۔
ٹھیک ہے، تو آپ کا ڈراما جو سے پہلے آپ نے کیا تھا کیس نمبر 9، اس پہ آ جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک بڑا انٹینس سٹوری کے ساتھ وہ ڈراما تھا، تو اس میں آپ اپنے کریکٹر کو کہاں دیکھتے ہیں اور کتنا امپیکٹ دیکھتے ہیں اس کریکٹر کا؟
اس کا امپیکٹ تو بہت ہو گیا تھا ایونچولی، اور میں نے بالکل بھی اس طرح ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، क्वाइट फ्रैंकली मैं जब वजाहत हुसैन के साथ काम करता हूँ तो मैं सारी चीजें ना डायरेक्टर पे छोड़ देता हूँ, बिकॉज आई नो कि बहुत मैंने काम भी किया है वजाहत के साथ और मुझे आइडिया है कि इज अ मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट, सो आई कम्प्लीटली ट्रस्ट हिज विजन एक्सेट्रा. सो मैं जो वजाहत कह रहा था वो मैं कर ही जा रहा था. सो बट इवेंचुअली व्हेन द रिजल्ट केम आउट आई वाज कम्प्लीटली सरप्राइज्ड. मुझे था कि थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट है और इसकी व्यूअरशिप कितनी हो सकती है, स्पेसिफिकली ये इसको आप रेटेड कंटेंट में ही कंसिडर करेंगे. सो आई वाज थोड़ा स्केप्टिकल कि ये किस तरह रिसीव किया जाएगा ऑडियंस में, बट आफ्टर द फर्स्ट एपिसोड मुझे ऐसा रिएक्शन आना शुरू हुआ, नॉट जस्ट फ्रॉम द ऑडियंस बट फ्रॉम माई फ्रेटर्निटी फ्रेंड्स एज़ वेल. आई मीन इट्स रियली एक बहुत इंकरेजिंग बात होती है, स्पेशली व्हेन आपके अपने फ्रेटर्निटी के लोग आपको यू नो दे कॉल यू अप एंड आस्क यू कि आपने बहुत अच्छा काम किया और व्हाट अ वंडरफुल फर्स्ट एपिसोड इट वाज. और मुझे बहुत कॉल्स आए फ्रेटर्निटी के लोगों से अप्रिशिएटिंग नॉट जस्ट द स्क्रिप्ट द प्रोजेक्ट बट माय कैरेक्टर स्पेसिफिकली व्हिच आई वाज बिकॉज मेन कैरेक्टर्स ऑफ कोर्स उस प्रोजेक्ट में वर फैसल एंड सबा वर द मेन जिनके गिर्द कहानी घूम रही थी. बट I guess the way Wajahat Hussain communicates a story, each and every character becomes Bilkul. very vital, very important in the script. And uska result was ke mujhe aksar logon ne ye kehna shuru kiya ki yaar aap ka kaam was so good. I was like, man, I'm actually done the exact same thing which I do in every serial. Maine kuch invent nahi kiya. But I guess it was the director's vision that made the character of Rohit very 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 special and I'm glad that I did that project.
अच्छा आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक हीरो को या हीरोइंस को जो मतलब या एक्ट्रेसेस या एक्टर कह लें उनको हम बहुत ज़्यादा टाइप कास्ट करना शुरू कर देते हैं कि कोई पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही ज़्यादा करेगा, नेगेटिव में कुछ बहुत कम है जो दोनों तरह के कैरेक्टर कर रहे होते हैं एक्टर्स. तो आपको लगता है टाइप कास्टिंग है थोड़ी सी, एक्टर्स की पोटेंशियल चेक करते रहना चाहिए कि भाई वो नेगेटिव में भी कर सकते हैं?
ऑफ कोर्स बिल्कुल टाइप कास्टिंग है, लेकिन इसका ब्लेम आप प्रोडक्शन को नहीं दे सकते. प्रोडक्शन देखिए, प्रोडक्शन के लिए तो आसान होता है बिकॉज एक अगर किसी एक्टर ने एक नेगेटिव कैरेक्टर में ऑलरेडी स्टैब्लिश अपने आप को करवा लिया है तो उसके लिए तो बहुत आसान होता है इसको कास्ट करके उसी कैरेक्टर में डाल दें, बिकॉज उसकी मार्केटिंग कॉस्ट बच जाती है, कम उसको कम एक्सपेंडिचर करना पड़ता है ऑन मार्केटिंग. ऑडियंस ऑलरेडी परसीव कर रही होती है यार ये नेगेटिव कैरेक्टर में अच्छा लग रहा होता है, चलो उसका देखते हैं अगला क्या है. सो ये प्रोडक्शन का फॉल्ट नहीं, आई थिंक यहाँ पे आके एक्टर हैज टू टेक दैट स्टेप के वो अपने आप को टाइप कास्ट कराना चाहता है या नहीं. मुझे याद है बनाए केम टू दिस फील्ड बैक इन 2010 मैंने प्रोजेक्ट किया था यहाँ प्यार नहीं है. सबा कमर थी उसमें और मावरा हुसैन थी. वो करने के बाद एकदम मैं टाइपकास्ट हो गया था, नेगेटिव कैरेक्टर था वो. और मुझे उसके बाद एक मताईजान मिल गया, मताईजान तू भी हम टीवी का था और उसमें भी साथी नेगेटिव कैरेक्टर था, मुझे और आना शुरू हो गया नेगेटिव कैरेक्टर. आई हैड टू पुट अ स्टॉप ऑन इट. मैंने आई मेड अ कॉन्शियस मूव कि यार मैं नेगेटिव कैरेक्टर नहीं करूंगा. 3-4 महीने मुझे आई हैड टू जस्ट सिट एट होम एंड डू नथिंग क्योंकि रिजिस्ट कर रहे थे थोड़े से प्रोडक्शन वाले भी कि यार अच्छा इसको पता नहीं पॉजिटिव करेगा रोमांटिक कैसे करेगा, ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. बट फिर मैंने वेट किया एंड द मोमेंट आई गॉट अ स्क्रिप्ट रीजनेबल अच्छी स्क्रिप्ट आई मुझे जिसमें पॉजिटिव कैरेक्टर था रोमांटिक कैरेक्टर था तो मैंने फिर वो किया. सो दैट्स हाउ एक्चुअली ब्रोक माई टाइप कास्ट और एवरी एक्टर शुड डू द सेम और करते भी हैं अक्सर एक्टर्स हु हैव द पेशेंस कि वो रोकें और थोड़े से सिलेक्टिव हो अपने काम में.
अच्छा आपको क्या पसंद है इस तरह के कैरेक्टर में?
मुझे तो वैसे एक्शन बहुत पसंद है. अच्छा, बहुत पसंद है एक्शन. इसमें महाफिज में स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और इसमें एक्शन बहुत है सरप्राइजिंगली फॉर टीवी. इतना आउटडोर है इसमें और इतना एक्शन सीक्वेंसेस हैं. बहुत ही डिफरेंट लोकेशन है, वेरी रॉ किस्म का एक्शन भी है इसमें विच इज़ वेरी अनलाइकली फॉर टी वी बट सी आई लव्ड इट. इसके अलावा एक्शन के अलावा आई लव कॉमेडी. आई लव डूइंग हम तुम. हम तुम वो एक स्क्रिप्ट था जो कि मुझे जब आया था तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल था बट दानिश नवाज मेरे दोस्त भी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार, कि दोस्त के साथ आप कंफर्टेबल होते हैं, दोस्त को आपकी ह्यूमर का आइडिया भी होता
है, वो निकलवा लेता है चीजें।
हाँ, सो दानिश का आइडिया था कि यार इसके अंदर वो एलिमेंट है, तो दानिश ने कहा कि नहीं यार ये करना है, तो मैंने किया। तो फिर हमने, मैंने और दानिश ने, ऑफकोर्स जो राइटर थी साइमा अकरम, उन्होंने इतना अच्छा लिखा हुआ था कि हमें उसके ऊपर हल्की फुल्की हम चीजें ऐड कर रहे थे, तो वो इतनी मजेदार लग रही थी। वंडरफुल स्क्रिप्ट दैट वाज, और फिर डायरेक्शन इतनी अच्छी थी, बाकी टीम इतनी अच्छी थी कि कॉमेडी करने का बहुत मजा आया। सो एक्शन एंड देन कॉमेडी ऑफकोर्स।
अच्छा, एक्शन की जब हम बात करते हैं, आपने कहा ड्रामे में एक्शन है, तो ड्रामे के अंदर फिर वो ये ना इतनी बड़ी कास्ट होती है, चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, तो वो एक्शन की एक हम कहीं ना कहीं आके लिमिट होती है कि फिल्म्स के अंदर अगर एक्शन फिल्म है तो वो एक्शन से भरपूर एक फिल्म होगी, तो वो आप कब कर रहे हैं, और हम बाकी लोग को ये एहसास होना चाहिए कि आप एक अच्छे एक्शन एक्टर हैं। हाँ
बिल्कुल, मैंने किया भी है, मैंने अपनी म्यूजिक वीडियोस में भी कुछ किया है।
अच्छा,
और इस प्रोजेक्ट में भी नजर आएगा। एक मैंने फिल्म की है, वो एक्शन हॉरर कॉमेडी है, उसमें भी एक्शन है, तो देखेंगे लोग।
तो वो फिल्म हम कब देख रहे हैं?
फिल्म अभी अभी थोड़ी रुकी हुई है। अच्छा। इसकी प्रोडक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, पोस्ट रहती है, इसकी डबिंग रहती है, तो हम सून हम एक रिलीज डेट उसकी सुनेंगे।
अच्छा जुनैद, आखिर में मैं आपसे एक सवाल करूंगी। आजकल ये बड़ी बहस छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पे, टीवी पे भी, कि हीरो हीरो जो है ना वो ये होना चाहिए, ये हीरो नहीं हो सकता, ये हीरोइन नहीं हो सकती, तो आप बताएं कि ये हीरो हीरोइन है क्या, जिस पे एजिज्म को लेकर आ गए, कोई कुछ लेकर आ गया इसके अंदर, तो आप क्या समझते हैं हीरो हीरोइन क्या क्या होता है?
देखें, हर मीडियम का जो है ना हीरो हीरोइन, वो उसकी ऑडियंस डिसाइड करती है, और टेलीविजन का जो हीरो है और हीरोइन है वो ऑडियंस ही डिसाइड कर चुकी है। फिल्म का जो है वो एक डिफरेंट है। आई थिंक टाइम था जब फिल्म का हीरो एक बहुत ही मैस्कुलिन किस्म का कैरेक्टर होता था, लाउड, मूंछों वाला, दाढ़ी वाला, गंडासे वाला, वो फिल्म की ऑडियंस ने डिसाइड किया था कि ये फिल्म का एक हीरो है, मेल कैरेक्टर है जो पूरा अल्फा, और औरत है जो कि सबमिसिव है, उसको उसको लुभाने में लगी हुई है। और वो टीवी का जो है मोस्टली, क्योंकि ऑफकोर्स वुमेन्स मीडियम है और हाउस होल्ड की खवातीन ज्यादा देखती हैं, तो उनकी आंख से जो है वो हीरो एक रोमांटिक किस्म का हीरो है। वो एक एक रोमांटिक हस्बैंड जो होता है ना, वो उनका हीरो है। रोमांटिक हस्बैंड क्या होता है? रोमांटिक हस्बैंड होता है जो कोई साफ सुथरा होता है, कॉलर वाली शर्ट पहन के ऑफिस जाता है, काम करने जाता है, उसके बाल भी बने हुए होते हैं, उसकी दाढ़ी भी ट्रिम होती है, वो एक प्यारे से लहजे में बात भी करता है, रोमांस भी करता है, उसके सर पर बाल भी हैं, ठीक है ना। एक्शन फिल्म में हम जैसे हम देखते हैं हॉलीवुड में, गंजे भी चल जाते हैं, सब चल जाते हैं, लेकिन टीवी में ये नहीं हो सकता। वो क्यों? क्योंकि ऑडियंस डिसाइड करती है। उसी तरह ऑडियंस जो है वो ये हीरोइन की भी एक एक बड़ी एक टिपिकल एक आपस का लेंस है कि वो एक एक मॉडर्स घराने की लड़की है, वो बहुत ही कोई करोड़पति भी नहीं है, मॉडर्स घराने की लड़की है, मिडिल क्लास की लड़की है, उसकी ड्रेसिंग भी मॉडर्स्ट है, उसके बोलने का तरीका भी मॉडर्स्ट है, वो चुलबुली भी है और उसके असूल भी हैं, और वो पर्दा भी करती है और वो काम भी करती है, सो एक खाका खिंचा हुआ है। सो इसमें हम एज एक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स वी डोंट डिसाइड, ये ऑडियंस डिसाइड करती है, और ऑडियंस कैसे डिसाइड करती है? जब वो किसी काम को अप्रिशिएट करती है। सो दैट्स हाउ। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि यार ये सारे हीरोज एक जैसे क्यों लगते हैं, सबकी खतें बनी हुई हैं, सबके बाल बने हैं। मेरा हमेशा यही जवाब होता है कि हमारी जो ऑडियंस है, मेजोरिटी जो खवातीन हैं, उनको मर्द इसी तरह ही अच्छा लगता है। इसके बाल बने होते हैं, उसकी दाढ़ी खत बनी होती है, वो एक अच्छी साफ सुथरी शर्ट पहनता है बटन, और वो एक अच्छी ट्राउजर पहनता है या सूट पहनता है, सो उनकी पसंद है। ये मर्द तो जितने भी एक्टर्स हैं मेल, वो वैसे ही नजर आ रहे होते हैं।
ठीक, तो उसका मतलब है कि फिल्म के अंदर हीरो हीरोइन की वेरिएशन का ज्यादा मार्जिन,
फिल्म में मार्जिन ज्यादा है, बिकॉज फिल्म में आप ये कह सकते हैं कि बड़ा पर्दा है, बड़े पर्दे में स्टोरीज थोड़ी डिफरेंट बन सकती हैं, उसमें मर्द भी ज्यादा सिनेमा जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, जेंजी क्राउड भी जाता है, आजकल जो यंग यंगस्टर्स वो भी जाते हैं। इन कंपैरिजन फिल्म्स जो हैं वो एक्शन फिल्म्स ही बनती हैं और हर किस्म की फिल्म बनती है, सो फिल्म में एक बढ़ जाता है। बट नाउ अब मल्टीप्लेक्सेस क्योंकि आ गए हैं, तो अब फैमिलीज जाती हैं मोस्टली फिल्म देखने के लिए, तो अब टेलीविजन और फिल्म में लाइन थोड़ी सी
ब्लर होती जा रही है।
बट स्टिल अभी भी सिनेमा जो है वो पोस्ट कोविड अब सिर्फ लार्जर देन लाइफ फिल्म्स तक की लिमिट हो गया है। अब आप लाउंज फिल्में सिनेमा में नहीं दिखा सकते। अब आपको सिनेमा अगर लेके आना है किसी को तो उसको एक बड़ी फिल्म दिखानी है।
तो आपको नहीं लगता जुनैद कि अगर हम चले ड्रामे में तो आपने कहा कि एक पर्टिकुलर थिंग होता है, फिल्म के अंदर हमें हीरो हीरोइन के लिए एजिज्म से निकल जाना चाहिए, जो आज भी हम बातें करते हैं और मुझे बस समटाइम्स अजीब भी लगता है इस तरह की आज तक बातें कर रहे हैं कि ये हीरोइन होनी चाहिए, हीरो होना चाहिए, इसको नहीं हो। तो हमें लगता है कि एजिज्म से और मतलब जो एक टिपिकल स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटीज है हमारी यहाँ जो राइज है उससे निकल जाना चाहिए कम से कम फिल्म के लिए हमें।
फिल्म देखिए ऑडियंस ऑडियंस पे डिपेंड करता है ना। देखो ऑडियंस हम एज एज ह्यूमन बीइंग्स हम हुसन परस्त तो हैं। सो अगर आप ये कहें कि जी आप एक हीरो जो है वो रोमांटिक हीरो वो अगर गुड लुकिंग ना हो तो वो कैसे उसको कैसे एक घर की खातून जो बैठी हुई है जो कि सारा दिन काम कर रही है और थक रही है।
अगर हम रोमांटिक फिल्म नहीं बना रहे,
अगर आप एक्शन फिल्म बना रहे हैं तो उसमें तो हो सकता है, उसमें तो उसमें उसमें भी, लेकिन वही बात है ना कि विजुअली तो चीज अपीलिंग होनी चाहिए ना। सो अगेन वो चीज ऑडियंस डिसाइड करती है, और ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेती है कि एक रोमांटिक हीरो, एज एन एग्जांपल दिया, रोमांटिक हीरो गंजा हो सकता है तो आ जाएंगे बहुत सारे जिनके बाल नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अक्सर लोग कमेंट्स में भी हमारे फैंस ही बोल रहे होते हैं कि यार ये मैच्योर लग रहा है, ये एजड लग रहा है, या फिर ये मैच्योर लग रही है, बड़ी लग रही है। सो ये तो है और ये हमेशा से है और ये रहेगा इवेंचुअली, बट
अनफॉर्चुनेटली
है क्योंकि इंसान हुसन परस्त है और उसको देखना है। लेकिन अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा
कहानियां हम लिख सकते,
कहानी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और कहानियां ऐसी आ भी रही हैं, मैं देखी भी हैं, जिनमें शायद वो एलिमेंट नहीं भी है। केस नाइन एक कहानी जिसमें वो एलिमेंट नहीं था हीरो हीरोइन वाला, प्योरली वाज ड्रामा था, और उसमें मेरे नहीं ख्याल के कैरेक्टर लाइक सबा को बहुत खूबसूरत लगने के मूड में कि नहीं थी कि बहुत ही खूबसूरत लगी, आई थिंक शी वाज ऑन पॉइंट एज पर हर कैरेक्टर। और सो यस अब चीजें आ रही हैं और लोग उनको अब अच्छे तरीके से अगर आप कहानी नरेट कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग चीजें दिखा रहे हैं, सो वहां पे आके एजिज्म वाली चीज खत्म हो जाती है,
व्हिच इज
अ गुड थिंग।
अच्छा आखिर में जुनैद बताएं कि आपका म्यूजिक का भी एक बड़ा फ्लोरिशिंग करियर है, तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं आजकल?
म्यूजिक देखिए म्यूजिक मेरा पैशन है और मैं म्यूजिक को एज अ फॉर्मूला नहीं लेता। अब क्योंकि इतना तेज हो चुका है जमाना, म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब आपको रिलीज हर महीने कुछ ना कुछ रिलीज करना है, एक दो गाने रिलीज करने हैं। आजकल के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, और अब तो नई टेक्नोलॉजी एआई टेक्नोलॉजी से अब तो इतना आसान हो गया म्यूजिक बनाना कि अब आपको महीने में दो तीन गाने या एल्बम्स निकाल सकते हैं आराम से, 15 मिनट में आप सारी एल्बम निकाल सकते हैं, अब तो इतना आसान हो गया। लेकिन मेरा प्रोसेस थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है, सो मैं स्लोली ग्रेजुअली करता हूँ। कुछ अपने सोलो ट्रैक्स पर भी काम कर रहा हूँ, कॉल के साथ हम दोबारा शोज कर रहे हैं, एक महफिल है कटोर है वो हो रहा है लाहौर कराची इस्लामाबाद में मई के महीने में, मुझे आईडी नहीं कि इंटरव्यू कब आएगा, बट मई में ये तीन शोज हम कर रहे हैं विद कॉल और आफ्टर वाइल। अभी हमने लाहौर में किया था महफिल का शो एक दो महीने पहले, वो वॉज वेरी वेल रिसीव्ड, सो वी डिसाइडेड के वी शुड डू मोर, और हमने अब ये तीन शोज करेंगे एंड लेट्स सी इफ द ऑडियंस wants to us to wants us to perform more, the we will.
Thank you Jared.
Thank you so much.
सितारों की दुनिया में आपने बातें सुनी जुनैद खान की, जिसकी वीडियो आप SBS उर्दू के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। SBS उर्दू के लिए ये रिपोर्ट कौकब जहां ने पेश की।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए।